الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो खबरें में भी भेज देते हैं, कुछ आ गया है ख्याल तो. अच्छा, तो इस क्लास में हम सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की तफसीर पढ़ रहे हैं मारूफुल कुरान जिल्द नंबर 5 से, और पेज नंबर 157 के ऊपर पहुंच चुके थे. तो जिस आयत की तफसीर हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, कुल हाजिही सबीली अदउ इला अल्लाह अला बसीरा अना व मन तबअनी व सुभान अल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम से बराह रास मुखातब होकर फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, इसकी तरफ मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ, अला बसीरा. ठीक है, हम उर्दू में भी कभी ये कह देते हैं अला वजही बसीरा, यानी हम बसीरत के रास्ते से ये काम कर रहे हैं. ठीक है, तो वही मुराद है कि हम कि मैं बसीरत के साथ बुला रहा हूँ, मैं भी और वो भी जो मेरी इत्तेबा करते हैं या जिन्होंने मेरी इत्तेबा करी. व सुभान अल्लाही व मा अना मिनल मुशरिकीन, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है, लेकिन एक दो नुकात जो है ना वो जरा हमने रिवाइज करने हैं, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर इसके तहत जो है वो एक बहुत ज्यादा अहम बात हुई थी जो पीर की क्लास थी. ठीक है, तो उसमें बात के दीन की जो तारीख का सुन्नत तरीका है वो है रिजाल तैयार करना प्राइमरीली, यानी जो पहली तरजीह होती है, पहला यानी सबसे ज्यादा जो फोकस होता है ना दीन के अंदर दावत और तबलीग के लिए, वो होता है रिजाल तैयार करना, और उसके बाद सेकेंडरली, ठीक है, दूसरी तरजीह होती है किताबों में दीन को महफूज करना. और उन उस महफूज करने का मतलब खाली ये नहीं है कि उसको फिर लॉक एंड की के अंदर रख दिया, किसी खजाने में, किसी तिजोरी के अंदर किताबों को रख दिया ताकि वो महफूज हो जाए, नहीं, बल्कि महफूज करने का मतलब ये है कि उस मतन को, उस मवाद को, उस कंटेंट को महफूज कर देना लिखी शक्ल के अंदर, और फिर उसको लोगों तक पहुंचाना. ठीक है, लेकिन उस किताब को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए इंसानों की, जिंदा इंसानों की जरूरत जो है वो हमेशा रहती है, पहले भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी. तो ये जो असातिज़ा तैयार करना है, यही वो रिजाल होते हैं, यही वो मशायख होते हैं, यही वो उलमाए कराम होते हैं जो कि किताबों को फिर समझाते हैं. और ना सिर्फ ये कि समझाते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, बल्कि इनकी एप्लीकेशन भी करके भी दिखाते हैं और गाइड भी करते हैं कि आप अपनी जाती जिंदगी में इस इल्म को कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है ना, तो ये सारा काम जो है ये किताब नहीं करती, ये रिजाल करते हैं, ये अल्लाह के बंदे करते हैं. और रिजाल के तहत रहते हुए जो निसा हैं, ठीक है, अमतुल्लाह हैं, निसाउल्लाह हैं, यानी अल्लाह की बंदियां हैं, अल्लाह की बंदियां, ठीक है, वो भी ये काम करती हैं खवातीन के अंदर. ठीक है, वो मर्दों में काम नहीं करती, मर्द मर्द और खवातीन दोनों में काम करते हैं, लेकिन कुछ बातों में पर्दे की पाबंदी की वजह से वो डायरेक्टली खवातीन में काम नहीं कर सकते, तो बीच में जो है फिर वो खवातीन को, अपनी महरम खवातीन को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो ये जो बंदा तैयार करना है, तो इसके लिए बंदे तैयार करने का मतलब क्या है, ये आप बताएंगे. बंदे तैयार करने का मतलब क्या है, क्या करना होता है बंदा, यानी बंदा जब तैयार होता है दीन का काम करने के लिए तो उसको कैसे तैयार होता है, किन बातों का ख्याल रखना होता है उसको, ठीक है ना, क्या क्या चीजें बताई थी पिछली क्लास में वो आप बता दीजिए। जी, बंदे तैयार का करने का मतलब क्या है कि बंदे की इसलाह, इन्होंने डायरेक्ट मैसेज में लिखा डरते डरते हैं ताकि कोई दूसरा ना देख ले, बहरहाल अच्छा लिखा इसलाह, ठीक है ना, बंदे की इसलाह करना। और बताएं, और अल्फाज बयान करें, ठीक है, पाक कुलूब और गहरा इल्म, यानी उनके कुलूब पाक करना, कुलूब का तस्फिया हो चुका हो, कुलूब का नफ्स का तज़किया हो चुका हो, और साथ साथ जो है वो इल्म गहरा हो, ठीक है, तो ये दोनों काम होते हैं तब जो है वो बंदा तैयार होता है, यानी उसकी अपनी जाती इस्लाह, क्या मतलब कि उसके अखलाक की इस्लाह, ठीक है, उसके अकायद की इस्लाह, उसके आमाल की इस्लाह, ठीक है ना, इसको इस्लाह नफ्स कहते हैं, इसको तज़किया नफ्स भी कहते हैं, इसको तस्फिया कल्ब भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज चाहिए होती है इल्म की गहराई, ठीक है, तो इसी पहली चीज को जिसको इस्लाह कहा, इसी को तकवा भी कहते हैं, खुदा खौफी भी कहते हैं, आखिरत की तलब भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है एक ही चीज के, तकवा, वकूफ कल्बी, मशायख के इसको वकूफ कल्बी भी कहते हैं, कल्बी जिक्र भी इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला का यानी जिक्र में हर वक्त जो है वो दिल जारी रहे, अल्लाह ताला से कभी भी गाफिल ना हो, ठीक है, तो ये जो तकवा है ना ये लाजिम है, तो बंदे तैयार करने का मुराद के मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ा दें पढ़ा दें पढ़ा दें, ठीक है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर पिछली दफा बात हुई थी कि भाई दूसरे लोगों में और हमारे मशायख की दावत के अंदाज में फर्क क्या है, तो वो हमने कहा कि भाई दूसरे लोग जो है ना वो बंदे तैयार नहीं करते, वो सिर्फ जो है ना वो रिकॉर्ड करवाया सेव करवाया और आगे फॉरवर्ड कर दिया वायरल कर दिया मीडिया के ऊपर डाल दिया, बंदे तैयार नहीं करते, और हमारे मशायख जो है वो बंदा तैयार करने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, और जो इल्म को सेव करके आगे पहुंचाना नशरो इशाअत करना उसके ऊपर दूसरे नंबर पे जोर देते, ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो आप यानी वो जो दूसरे लोग हैं, ठीक है ना, जो यानी हमारे मशायख और उलमा के अलावा जो है वो भी ये कह सकते हैं कि भाई बंदे हम भी तैयार करते हैं, हमने भी स्टूडेंट्स तैयार किए हैं, हमारे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे भी इंस्टीट्यूट्स हैं और हमारे भी जो है वो इदारे चलते हैं, और हम भी बंदे तैयार करते हैं, बल्कि बंदियां भी तैयार करते हैं, बल्कि दोनों को एक साथ ही तैयार करते हैं, साथ साथ भी बैठा के तैयार करते हैं, ठीक है ना, पर्दे वर्दे की तकल्लुफ भी नहीं करते और बंदियां बल्कि ज्यादा तैयार कर देते हैं, बंदे कम तैयार करते हैं, वगैरह वगैरह, वो भी बहुत कुछ कह सकते हैं बंदे तैयार करने के बारे में, बहुत कुछ क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे फिर, हाँ नहीं हम ज्यादा अच्छे बंदे तैयार करते हैं, तुम ज्यादा अच्छे बंदे तैयार नहीं करते, ये कहेंगे फिर हम, ठीक है, तो भाई फर्क क्या है, बंदे तैयार ठीक है वो भी करते हैं, लेकिन वो करते हैं तो उनके यहाँ बंदे जो तैयार हो रहे होते हैं वहां पर ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता है, वहां पर ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता है, ये आप बताएं जल्दी से, इल्म के ऊपर, एग्जैक्टली, एकेडेमिक्स भी इसको कहते हैं, एकेडेमिक्स, इसके ऊपर फोकस ज्यादा होता है, और जो तकवा होता है उसके ऊपर फोकस या तो कम होता है या होता ही नहीं है, या तो कम होता है इल्म के मुकाबले में, कम होता है या होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता, कैसे आप ये कह सकते हैं कि उनके यहाँ फोकस तकवा के ऊपर नहीं होता, ठीक है ना, वो क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो अकायद हैं और जो शरी अहकाम हैं उनके ऊपर अमल जो है वो इदारे के लेवल पर नहीं किया जा रहा होता, इवन लाइक एक होता है ना पर्सनली जो है भाई कोई तालिबे इल्म तकवा पे अमल नहीं कर, हमारे मदारिस के अंदर भी ऐसे बहुत से तालिबे इल्म मिल जाएंगे जो कि तकवा वाली जिंदगी नहीं गुजार रहे होते हैं, बहुत गलत उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि तकवा वाली जिंदगी नहीं गुजार रहे होते हैं, नहीं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, बहैसियत इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, बह यानी इज्तिमाई शक्ल में बात हो रही है, ठीक है ना, ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल तकवा का ख्याल नहीं रखा जा रहा,
शरीयत को तोड़ा जा रहा है, अहकामात को जो है वो साइड पे किया जा रहा है, और खुसूसन ये चीज सबसे ज्यादा जो है वो वाजह होके कहां किस शक्ल में नजर आती है कि औरतों और मर्दों का इख्तलात, मर्दों और औरतों का जो इख्तलात है ना, ये बहुत ज्यादा नजर आता है, पर्दे का ख्याल नहीं किया जा रहा होता वहां पर, ठीक है ना। और इसके बाद जो दूसरी नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो कि आहिस्ता आहिस्ता सीपन करती है वो मौसीकी होती है, मौसीकी, ठीक है ना। और हत्ता के बात आगे मजीद बढ़ती है, पहले पर्दा खत्म होता है, फिर मौसीकी भी आती है, फिर उसके बाद जो है ना वो शरीयत के अहकामात की तारीफात को बदलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तारीफात को बदलना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि तकवा जो है ना वो जीरो हो जाता, तकवा जीरो हो जाता है। देखें तकवा के बारे में याद रखें, उम्मीद है कि कुछ लिखते भी होंगे आप में से इन बातों को। तकवा के बारे में याद रखें कि तकवा के बहुत सारे दर्जे हैं, ठीक है ना, और वो यानी यू नेम इट, बहुत सारे दर्जे हैं। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने मशायख से हमने उनके बारे में सुना कि उनका इंतकाल हुआ तो किसी को ख्वाब में आए तो पूछा कि भाई आपके साथ क्या बना, तो हजरत ने फरमाया कि हमने तो मोटा मोटा तकवा इख्तियार किया, हजरत शाह वली उल्ला रहमतुल्ला अलैह ने। अच्छा कोई बात हो रही थी शायद आपस में लोगों में ना कि कौन ज्यादा अफजल थे, हजरत शाह वली उल्ला रहमतुल्ला अलैह ज्यादा अफजल थे कि हजरत अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्ला अलैह ज्यादा अफजल थे, तो वही ख्वाब में नजर आए तो पूछ लिया भाई। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो मोटा मोटा तकवा इख्तियार किया और शाह वली उल्ला मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्ला अलैह ने बहुत बारीकी के साथ तकवा इख्तियार किया। तो तकवे के दरजात हैं, इसमें सबसे कम दर्जा क्या है ये आप बता दें, ठीक है। ये थोड़ी सी इंटरेक्टिव टाइप की क्लास शुरू हो गई है आज। तकवा का सबसे कम दर्जा क्या है, सबसे मिनिमल दर्जा क्या है? हया नहीं, फराइज पर अमल नहीं, तकवा का सबसे कम दर्जा क्या है? हराम से बचना नहीं, अकायद सही होना, ठीक है ना। ये सब ये जवाब तो हम एक्सेप्ट करते हैं, अकायद का सही होना, ठीक है ना, बुरे को बुरा समझना, ठीक है ना। इसी को हमारे मशायख की टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, वो लफ्ज मुझे आपसे चाहिए, मशायख बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे कम दर्जा इसका क्या है? तकवा का, तकवा का सबसे कम दर्जा। आपकी अब बातें सही हैं, गलत नहीं कह रहा आप लोगों के जवाब, लेकिन एक लफ्ज चाहिए, वो क्या है? वो है तौबा, तौबा यानी गुनाह करके उसके ऊपर तौबा कर लेना, नादिम होना, शर्मिंदा होना, अल्लाह ताला से ना करने का इरादा करना, ठीक है ना, और फिर उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत कदम वगैरह उठा लेना, कोई ऐसा अमल कर लेना जिससे कि वो तौबा पे इस्तकामत भी नसीब हो जाए। ये तीन शराइतें जिससे कि तौबा होती है, ये सबसे कम दर्जा है तकवा का, कि ताएब हो बंदा, ताएबा हो बंदी, अपनी गलती को गलती मानती हो, गुनाह को गुनाह समझती हो, ठीक है ना। जब इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर ये तसव्वुर दिया जाता है तलबा को कि जी ये तो गुनाह है ही नहीं, ये बेपर्दगी तो गुनाह है ही नहीं, ये मौसीकी तो गुनाह है ही नहीं, ठीक है ना, और ये जो अहकामात है ना, ये अहकामात तो ऐसे नहीं है जैसे कि मौलवियों ने और ट्रेडिशनल और जो है वो तंग नजर लोगों ने बनाए हुए हैं, तो इससे क्या होता है, एक नया दीन बन जाता है, जिस दीन को क्या कहा जाता है, जिस दीन को बिदत कहा जाता है, ये बिदती दीन होता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली बिदत का मतलब सिर्फ जो है ना वो मजारों के ऊपर जाकर के देगे चढ़ाना और जो है वो कव्वाली करना और ये करना, ये उल्टी सीधी जो 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 बरेलवी हजरात करते हैं ना, हजरात तो खैर क्या बोले उनको, लेकिन बरेलवी लोग करते हैं 12 रबीउल अव्वल के ऊपर, उनको हम बिदत कहते हैं। दीन के अहकामात के अंदर लेवल्स को चेंज कर देना, इसको हम बिदत नहीं समझते, ठीक है। तो भाई ये बिदत होती है, और बिदत ही यानी दीन के अहकामात को चेंज करना, ठीक है ना, ये बिदत होती है, जो चीज नहीं है किसी लेवल के ऊपर उसको उस लेवल के ऊपर रख देना, ये बिदत होती है, ठीक है ना। ऊपर के लेवल वाली चीज को नीचे के लेवल पर रख देना, नीचे के लेवल की चीज को ऊपर के लेवल पर रख देना, जो चीज उस लेवल में किसी भी लेवल में नहीं थी उसको किसी लेवल के ऊपर ला करके रख देना। लेवल्स क्या है? फर्ज, वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, हराम, राइट, ये सारे जो है वो दीन के लेवल्स हैं। किसी चीज को उस लेवल पे ला के रख देना जो जहां वो बिलोंग नहीं करती थी, इसको बिदत कहते हैं। और बिदती के बारे में क्या है, उसूल क्या है बिदती के बारे में, कि बिदती को तौबा की तौफीक नहीं मिलती। बिदती को तौबा की तौफीक नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि वो उस बिदत को दीन समझ के कर रहा होता है, सवाब समझ के कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये जो बिदत की तारीफ है ना, जो कि असल बिदत की तारीफ है और मुकम्मल बिदत की तारीफ है, इस तारीफ के ऊपर सिर्फ आपके मजारों वाले नहीं आते, बल्कि इस बिदत की तारीफ के अंदर दूसरी तरफ वाले कौन कौन आते हैं? सिर्फ मजारों वाले और ये खानकाहों वाले और ये वाले नहीं आते, बल्कि दूसरी तरफ जिनको के हम बड़ा बड़ा उनको इज्जत के साथ देखते हैं, बड़ा उनको भी लुक अप टू देम, कौन आते हैं इनके अलावा? दूसरे लोग मॉडर्न इस्लाम वाले, लिबरल्स नहीं, लिबरल्स तो दीन के अंदर होते ही, उनको दीन का तो मजाक ही नहीं करते लिबरल्स। मॉडर्न इस्लाम वाले, मॉडर्न इस्लाम वाले, ठीक है ना, चाहे उसको आप अमेरिकन इस्लाम कहें, चाहे उसको आप जो है वो यूरोपियन इस्लाम कहें, चाहे उसको आप जो है वो रोशन ख्याल इस्लाम कहें, ये भी बिदती हैं। और ये भी वो सारी बातें जो है ना वो सवाब समझ के कर रहे होते हैं, दीन की खैर ख्वाही समझ के कर रहे होते हैं, दीन को तब्दील करने वाली बातें, ठीक है। तो फिर ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो तकवा मुमकिन ही नहीं है ऐसे बंदे के, क्योंकि वो तो दीन का जो तकवा का जो लोएस्ट लेवल है तौबा, वो तौबा से ही महरूम हो गया ना, क्योंकि बिदत ही हो गया, अब वो तौबा से ही महरूम हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से जो दीन के दुश्मन होते हैं ना, दीन के दुश्मन जो होते हैं ना, उनका एम्फेसिस जो है वो सबसे ज्यादा रहा है मुसलमानों के दीन को तब्दील करना, मुसलमानों के दीन को, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती के जरिए से मुसलमानों को नहीं रोक पाते हैं, कभी भी नहीं रोक पाते, जोर जबरदस्ती के इनको जान से मार दो, इनका माल छीन लो, इनको जो है वो इनकी इबादतों से रोक दो, मस्जिद बंद कर दो, और इनके मस्जिद को जो है वो ढा दो, इनके जो है वो मदरसे को ढा दो, ऐसे वो कभी भी इस्लाम को नहीं रोकने के लिए के काबिल हो पाते हैं। तो वो पहले दिन से और आज तक उनका एम्फेसिस क्या होता है कि किता के दीन को तब्दील किया जाए, ठीक है, दीन को तब्दील किया जाए। और ये दीन की तब्दीली जो आज मर्दों में बात हो रही है, वही औरतों के अंदर भी बात हो रही है, ठीक है ना। औरतों में हमारे यहाँ सूरह बनी इसराइल की तफसीर चल रही है, उसके अंदर हमने पिछली पूरी की पूरी क्लास तकरीबन इसी आयत के ऊपर लगाई, जहां अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम, अपने हबीब अलैहिस्सलाम को वजह तख्लीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, व इन कादु लयफ्तिनूनक अनिल लजी औहैना इलैक, कि ये लोग तो चाहते हैं कि आपको उस चीज के बारे में जो हमने वही करी है आपकी तरफ फितने में मुब्तला कर दें, लितफ्तरिया अलैना गैर, ताकि आप इस वही के ऊपर, आप हमारे ऊपर जो है वो कुछ झूठ बना लें, यानी जिस चीज का हमने हुक्म नहीं दिया है आप उसको हमारी तरफ मंसूब करके कहें कि ये अल्लाह का हुक्म है, और जिस चीज का हमने हुक्म दिया है उसको हमारी तरफ मंसूब करके कहें कि नहीं इसका तो अल्लाह ने हुक्म दिया ही नहीं। ये चाहते हैं ये लोग। लामे कई से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि वो आपको इस वही के बारे में फितने में मुब्तला करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ताकि तफ्तरिया अलैना गैर, आप हमारे ऊपर झूठ जो है ना वो घड़ लें हमारे बारे में। और फिर क्या होगा जी, हाफिज साहब हैं कोई यहाँ पे? फिर क्या होगा इसके बाद, क्या क्या होता है जो आजकल हो रहा है, जो आजकल एग्जैक्टली जो हो रहा है जी, हाफिज साहब याद है कुफाज कराम, अल्लाह ताला इसके बाद बताते हैं कि एग्जैक्टली दे टेक यू एज ए फ्रेंड, जज़ाकुमुल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, नौजवान बल्कि नौजवान से भी कम है, वह इजरा इजन लत्तखदू का खलीला, और जब आप दीन को तब्दील कर देंगे ना, आप हमारे ऊपर झूठ गढ़ देंगे, ठीक है ना, चाहे वो बिदत के लेवल का झूठ हो, चाहे वो कुफर के लेवल का झूठ हो, ठीक है ना, यानी जो 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 قطعی ثبوت چیزیں ہیں ان کو تبدیل کر دیں گے تو کفر کے لیول کا جھوٹ ہو جائے، اور اگر آپ ظنی و ثبوت چیزوں کو تبدیل کر دیں گے، ہے نا، تھوڑا سا جنہوں نے علم پڑھا ہوا ہے وہ ظنی اور حقیقت، بلکہ اب تو سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کیونکہ اتنا اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، جو ظنی و ثبوت چیزیں ہیں جب ان کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر آپ کفر کے لیول کی بدعت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن فسق و فجور کی لیول کی بدعت کر رہے، بدعتیں دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اس قسم کی بدعتیں کریں گے نا تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کو گلے لگا دیں گے، وہ آپ کے ساتھ مل کر کے پروٹیسٹ کریں گے فلسطین کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، وہ آپ کے باہوں میں باہیں ڈال کر کے پروٹیسٹ کریں گے، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، وہ آپ کے ساتھ دوستی کریں گے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اس کے بعد آپ کے ساتھ، وَإِذَا جب آپ ایسا کر لیں گے لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، ضرور بال ضرور وہ آپ کو دوست بنا لیں گے، وہ آپ کو دوست بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پھر سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، قرآن عظیم الشان یہ ہمارے اوپر حجتیں تمام کر گیا 1400 سال پہلے، اور یہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے اپنی اصل شکل کے اندر رکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے نا تمہیں کوئی بہانہ نہ ملے کہ جی ہمیں پتا نہیں تھا، ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی تھی یہ والی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی بطور حجت کے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھی کھڑے کر دیے جو کہ ان حجت والی باتوں کو ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان بھی کریں اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے؟ اسی کو پلورلزم بھی کہتے ہیں جو انہوں نے لکھا، اسی کو پلورلزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب دوست سب مل بیٹھ کر کے دنیا کے مسائل کا حل نکالیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے مسائل بتا کے نہیں گئے، نعوذ باللہ، قرآن مجید نے دنیا کے مسائل کا حل نہیں بتایا، اب جو ہے نا وہ عیسائیوں یہودیوں ہندوؤں اور بدھوں اور ان سب کے ساتھ مل کر کے دنیا کا حل نکالیں گے، شیخ صاحب، آج کے شیخ صاحب، ٹھیک ہے جی؟ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، یہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ خالی ان کے خلاف نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی محنتیں کرتے تھے کہ دین کو تبدیل کر لیں نبی علیہ السلام کسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یعنی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم نے خواتین کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو آیات ہیں نا بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی بڑی عجیب آیات ہیں، بڑی عجیب و غریب آیات ہیں، ان میں یعنی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے حضرت نے ایک بیان کے اندر ان آیات کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں ان آیات کا ترجمہ کر سکوں، کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے کھڑا کر کے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ دیکھو تم کس کھیت کی گاجر مولی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، میں اپنے حبیب کو ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر آپ ذرہ برابر بھی ان کی طرف تھوڑا سا بھی جھکے نا ان کی طرف، ٹھیک ہے نا، اذن ادھر بھی اذن کا لفظ استعمال کیا، ادھر بھی اذن، اوپر بھی اذن کہ یہ لوگ جو ہے نا پھر آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر ہم نے آپ کو سنبھالے نہ رکھا ہوتا نا تو آپ ان کی طرف شیئن قلیلن بھی اگر جھک جھک جاتے ہیں نا، تھوڑا سا بھی اگر جھک جاتے تو پھر کیا ہوتا، اوپر بھی بتایا نا تو پھر کیا ہوتا، وہ دوست بنا لیتے، ادھر بھی بتایا پھر کیا ہوتا، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، ہم آپ کو زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے اندر بھی دگنا عذاب دیتے، دگنا مزہ چکھاتے، لَأَذَقْنَاكَ کا چکھا دیتے، رائٹ، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور آپ ہمارے خلاف کسی کو اپنا دوست نہیں سمجھ نہیں نہیں پاتے، کسی کو اپنا مددگار نہیں پاتے، ٹھیک ہے نا؟ از اٹ واٹ پلورلزم از، دین تبدیل کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے حفاظ کرام، پھر بھائی ہمیں تو حفاظ کرام کے اوپر ڈیپینڈنسی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کے دوست کب بنیں گے، دوست بننے کا فارمولا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، یہاں پر بھی بتا دیا، اس والی سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بھی بتا دیا، और वो वाली आयत भी जिसमें वो है ना कि ये कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे व्हेन यू फॉलो देयर रिलीजन, ठीक है ना। तो ये अब तो अंग्रेजी में आपने बताया, फादर का नाम तो इरफान मजीद की आयत भी बता सकते हैं, ठीक है ना। जब आप उनकी इत्तबा करेंगे ना तब ये आपके दोस्त बन जाए, ठीक है ना भाई। भाई काफिरों की जो दोस्ती होती है ना ये सबसे महंगी दोस्ती है, सबसे महंगी दोस्ती, क्योंकि इस दोस्ती से जो है ना वो हम जन्नत को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह देते हैं। वलन तरदा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लत मिल्लत, ठीक है। तत्तबिअ मिल्लत हम, या ये तो याद नहीं है यार। खैर तो ये है, आप वो कभी भी आपसे राजी नहीं होंगे। अब आप इस वक्त जो है वो सारी दुनिया में जो रजा मर्जा देख रहे हैं, माशाल्लाह दाढ़ी से भी किसी को मसला नहीं, आप जाकर के एयरपोर्ट्स के ऊपर नमाजें पढ़ें, आप जहां भी जाकर के नमाजें पढ़ें, आप जहां भी जाकर के अपने दीन की जो है वो तबलीग करें, पहले फलस्तीन का नाम नहीं लिया जा सकता, किसी की मजाल नहीं थी कि वो फलस्तीन का नाम ले और जो है ना वो उनके खिलाफ कोई बात करे। अब देखें हर जगह जो है वो नाम भी नाम नहीं बल्कि जो है वो सब कुछ चल रहा है और उसके खिलाफ जो है वो बातें भी चल रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी ऑन वन साइड, एवरीवन इज ऑन वन साइड। ये कहां से हो गया? कुरान मजीद ने क्या फरमाया, लन तरदा अनकल यहूद वल नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतुहुम, लन तरदा, हरगिज नहीं वो राजी होंगे तुमसे। और ये किधर से राजी हो गए सारे के सारे, मतलब क्या है कि क्या मतलब है ये आप खुद ही समझ लें। हत्ता तत्तबिअ मिल्लत, जब तक तुम उनकी मिल्लत की इत्तबा नहीं करोगे। और कुफार क्या है, ये एक मिल्लत होते हैं, वैसे तो इनके आपस में कुलूब जो है वो शत्ता होते हैं, इनके आपस में बड़ी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन मिल्लत वाहिदा होते हैं। तो हत्ता तत्तबिअ मिल्लत उनका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो सबको खुश कर रहे हैं, बल्कि जो ओवरऑल इनका एजेंडा है एंटी इस्लाम, एंटी इस्लाम मतलब दीन को खत्म करने का एजेंडा, दीन को खत्म करने का एजेंडा, इसमें आप इनकी इत्तबा कर रहे हैं, इनकी मिल्लत की इत्तबा कर रहे हैं, समथिंग ऑन विच दे ऑल एग्री अपॉन, समथिंग ऑन विच दे ऑल एग्री अपॉन, वरना ये किसी चीज के ऊपर एग्री नहीं करते। लूट खसूट आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई भड़ाई सब कुछ के ऊपर ये कोई किसी चीज के ऊपर एग्री नहीं करते, क्योंकि इनके कुलूब आपस में टूटे हुए हैं, शत्ता हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऊपर से लगता है तहसबहुम जमीअन, तुम्हें लगता है कि सारे के सारे मिले हुए हैं लेकिन कुलूबहुम शत्ता, तो फिर ये किस बात के ऊपर मुत्तफिक है? सिर्फ इस्लाम के खिलाफ मुत्तफिक, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ। तो इस्लाम के खिलाफ क्या करते हैं इस्लाम? इस्लाम कोई कोई नाउज बिल्ला किसी बकरी का नाम है कि उसको मार देना चाहते हैं ये? इस्लाम क्या है? इस्लाम अकायद का नाम है ना, इस्लाम एक नजरिए का नाम है ना, इस्लाम नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद का नाम है ना, ये है इस्लाम, राइट। तो इस्लाम के खिलाफ होने का मतलब क्या हुआ? नजरिए को तब्दील कर दे, राइट, एतमाद को जो है वो खत्म कर दे, बस ये है इस्लाम, एतमाद नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर इसको खत्म कर दिया, अपने ऊपर एतमाद बना लिया, किसी और चीज के ऊपर एतमाद बना दिया, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद खत्म कर दिया, WHO के ऊपर एतमाद बना दिया। अब करो सडन डेथ, जो अल्लाह और उसके रसूल का हक था ना, तुमने वो उठा करके WHO को भी दिया और भी बहुत सारों को दिया, जिस तरह तालीमी निजाम को दिया। कैसा अंधा एतमाद करते हैं, राइट, कैसा ईमान लेकर के आए हुए हैं इस तालीमी निजाम के ऊपर कि ये है तो कामयाब है, ये नहीं होगा तो नाकाम हो जाएंगे, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर स्कूल में दाखिल ना किया, अगर इनका निसाब ना पढ़ा, अगर इनके मुताबिक जो है वो तालीम ना दिलवाई। कितना एतमाद है हमें इनके तालीमी निजाम के ऊपर, कामयाबी की जमानत इनका तालीमी निजाम, कामयाबी की, अच्छा कामयाबी की जमानत इनके मीडिया से जो हमें खबरें मिलती हैं, कोई कामयाब हो गया कोई नाकाम हो गया, किसने बताया तुम्हें? मीडिया ने बताया। किसका मीडिया है? इनका मनावे है मीडिया। एतमाद जो अल्लाह और उसके रसूल पर एतमाद होना था वो हमने इनके निजाम के ऊपर रखा, इनके जो है वो मीडिया के ऊपर रखा, और उसी तरीके से इनके WHO के ऊपर रखा, ठीक है ना। जो उन्होंने कहा हमें आंखों देखी चीजों के ऊपर एतबार नहीं था, हमें साफ इनकंसिस्टेंसीज नजर आ रही हैं, साफ जो है वो तमाशे नजर आ रहे हैं, झूठ नजर आ रहे हैं, लेकिन वी डिड नॉट केयर। हमें जो वहां से खबर मिल रही है, वहां से जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, हमने उसी के ऊपर एतमाद किया और हमने उसी को इत्तेबा कर। अब जो है ना वो सेंटर बना रहे हैं, सेंटर फॉर सडन डेथ। रूहानी सडन डेथ तो पहले ही हो रही थी, वो बल्कि हो चुकी थी। रूहानी सडन डेथ भी तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसी जमाने के बारे में बताया ना, सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। ये क्या चीज है? क्या मोमिन से काफिर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो 12 घंटे लगते हैं कि सुबह को मोमिन होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुफर की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन उसकी होगी और शाम होते होते तक फिर वो जो है वो काफिर हो जाएगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा का मतलब ये है सडन डेथ, रूहानी, सडन रूहानी डेथ। क्योंकि एक अकीदे का इनकार कर दिया, कतियु सबूत अकीदे का, कतियु सबूत या कतियु दलाला, इनकार कर दिया, इमीडिएट डेथ, रूहानी डेथ, कुफर, खलास। उसी तरीके से दूसरी चीज क्या होती है? अब जो है ना, तुमने रूहानी डेथ तो बड़ी कर ली ना, अब तुम्हें हम जिस्मानी डेथ का भी मजा चखाएंगे। अभी कितनी खबरें आपके पास अगर हो तो मुझे भी बताइएगा। मेरे पास दो तो इस वक्त सामने बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ हंसी मजाक चल रहा है, बातें चल रही हैं, एकदम से गिरती है और फिर नहीं उठती, एकदम से गिरता है। क्योंकि एक मर्द और एक औरत के बारे में अभी चंद दिन पहले की बात, और उसके अलावा और भी हैं, लेकिन उनकी कोई शुमार नहीं है, उनका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो इस वजह से हम समझते हैं कि दिस इज नॉट रियल। पीपल आर टेलिंग अबाउट देयर ओन पर्सनल रिलेटिव, अबाउट देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है जो कि इसको लॉग कर रहा हो, जो कि उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हो। इस वजह से हम समझते हैं कि बस ऐसी ऐसी बस लोगों के जहनों के अंदर जो है ना वो एक बन गया है कि हाँ ये हो रहा है, खाम खा का एक, यानी एक वहम है, एक वहम है, जिसकी वजह से ना अब तो भाई सेंटर भी बन गया। और ये सेंटर ऐसे नहीं बन जाते कि जी क्यों हो रही है इतनी सारी सडन डेथ। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बताया था हमें हदीस मुबारका के अंदर, एक जमाना आएगा कि जिसके अंदर ये होगा, ये होगा, ये होगा, और सडन डेथ भी हो जाएगी, आम हो जाएगी, आम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उसकी। तो सडन डेथ रूहानी भी और सडन डेथ जिस्मानी भी। ठीक है, इन्होंने लिखा कि इज इट डज इट मीन Does it mean that we have already followed them? Exactly. वरना वो आपको गले क्यों लगा रहे हैं? वरना वो आपसे दोस्तियां क्यों कर रहे हैं? वरना वो आपसे इतना खुश क्यों है? Exactly. या तो कुरान सच्चा, या नाउज बिल्ला हमारी जो है ना वो या शैतान सच्चा। भाई शैतान तो सच्चा नहीं है ना, तो कुरान ही सच्चा है ना। तो कुरान ने क्या फरमाया? वलन तरफा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लत। अब हम अपने गरेबान में झांक करके देख लें कि हम किसको सच्चा मानते हैं, कुरान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ठीक है, तो भाई रिजाल तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज है तकवा, और तकवा का सबसे कमतर दर्जा है तौबा, और तौबा उसी वक्त हो सकती है जब अकायद दुरुस्त हो, जो फर्ज है उसको फर्ज मानता हो, उसको जो है ना वो मुबाह ना मानता हो, उसको फर्ज मानता, मुस्तहब ना मानता हो बल्कि उसको फर्ज मानता हो, जो हराम है उसको मुबाह ना मानता हो बल्कि उसको हराम ही मानता हो, ये होते हैं अकायद की दुरुस्ती। हर दीन को जो है वो अल्लाह तक पहुंचने का एक पॉसिबल रास्ता ना मानता हो बल्कि बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता मानता हो, ये अकायद है। और जब तक अकीदा दुरुस्त है तब तो तौबा की तौफीक हो सकती है, अगर अकीदा खराब हो गया अब तौबा की तौफीक नहीं हो सकती, जब तक कि वो अकीदे की खराबी से तौबा ना करे उस वक्त तक तौबा की तौफीक, क्योंकि वो गलत काम करेगा, नेकी का नेकी समझ के कर रहा होगा, और वो क्यों क्यों करेगा तौबा उसकी, क्योंकि वो नेकी समझ के कर रहा है। ठीक है ना? नहीं, सडन डेथ्स डू नॉट इंक्लूड रोड एक्सीडेंट्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोड एक्सीडेंट्स यार, ठीक है ना, अब चले आपकी उम्र ऐसी है तो इस वजह से आपसे ऐसे सवाल जो है ना वो जायज है। 38-year-old colleague slept on Friday night last September, didn't wake up. We buried him in the local cemetery. और भी बहुत सारे, आपको जरा देखते जाए, जरा नोट करते जाए अपने पास, ऐसे भी थोड़ी इदारे बन रहे हैं, सेंटर्स बन रहे हैं। बहरहाल कितना टाइम रह गया, टाइम तो खत्म होने वाला है, 5 मिनट। तो हमारे अक्सर क्लास में ऐसे ही होता है कि 5 मिनट में फिर हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे फरमाते हैं, सुबहानअल्लाह, यानी शिर्क से पाक है अल्लाह, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं। ऊपर चूंकि ये जिक्र आया था कि अक्सर लोग जब अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं तो उसके साथ शिर्क जली या खफी मिला देते हैं। ठीक है, शिर्क जली का मतलब बिल्कुल क्लियर शिर्क, यानी बुतों को सजदा करना, या जो है वो कोई ऐसे अकीदे का जो है वो इनकार कर देना, जो कतई सबूत अकीदा है उसका इनकार कर देना, ये शिर्क जली होगा। और खफी क्या होता है? रियाकारी। ठीक है, यानी अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए या दूसरे किसी इंसान की तारीफ की खातिर जो है वो नेकी का काम करना, इसको शिर्क खफी कहते हैं। इसलिए शिर्क से अपनी बिल्कुल बराअत का ऐलान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। खुलासा यह है कि मेरी दावत का ये मतलब नहीं कि मैं लोगों को अपना बंदा बनाऊं, अपना बंदा बनाऊं, बल्कि मैं खुद भी अल्लाह का बंदा हूं और लोगों को भी उसी की बंदगी की तरफ दावत देता हूं। अलबत्ता बहैसियत दाई मुझ पर ईमान लाना फर्ज है, यानी मुझे खुदा बनाना फर्ज नहीं है कि मुझे खुदा का दर्जा दे दो, नहीं, और तुम मेरे बंदे बन जाओ, नहीं, बंदे तो तुम अल्लाह ही के हो, अल्लाह ही के बनो, और मेरा मकसद भी यही है कि मैं तुम्हें अल्लाह की बंदगी सिखाऊं, राइट। मेरे ऊपर ईमान लाना फर्ज है, यानी अल्लाह को कैसे राजी करना है ये मुझसे सीखना फर्ज है, ये मुझसे सीखना फर्ज है। ये होता है नबी पर ईमान लाने का मतलब, कि अल्लाह को कैसे राजी करना है, कामयाबी कैसे हासिल करनी है, ये हम नबी से सीखेंगे, ये हम किसी और से नहीं जाकर के सीखेंगे, वरना फिर हमने नबी पर ईमान नहीं लाया, हमने किसी और के ऊपर ईमान ले आया। ठीक है, किसी और के ऊपर ईमान लाएंगे तो ये कुफर और शिर्क कहलाएगा, दोनों चीजें कहलाएगा, ये सिर्फ कोई एक नहीं, दोनों, कुफर भी कहलाएगा, शिर्क भी कहलाएगा। इस पर जो मुशरिकीन ने मक्का ये शुबा पेश किया करते थे कि अल्लाह ताला का रसूल और कासिद तो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता होना चाहिए, तो इसका जवाब अगली आयत में इस तरह से फरमाया। ठीक है ना, ये पुराना पुराना प्रॉब्लम है जो कि आज तक परसिस्ट करता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, और दूसरी बात क्या होती है, दूर के ढोल सुहाने। ये अजीब उर्दू जुबान का मुहावरा है जो कि बड़ा जबरदस्त तरीके से अप्लाई होता है हर जमाने, हर माहौल के अंदर। ठीक है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, दूर के ढोल सुहाने। ठीक है ना, तो ये जो मुशरिकीन ने मक्का थे ये भी यही काम करते थे, घर की मुर्गी, नऊज बिल्ला, सुम्मा नऊज बिल्ला, सुम्मा नऊज बिल्ला, उर्दू का मुहावरा है और बात समझाने के लिए खाली कुछ इस्तेमाल किया है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इनकी लोकल नेमत थी ना, लोकल नेमत, नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानेंगे, हालांकि सारी चीजों से वाकिफ हैं, मानते भी हैं कि ये सादिक हैं, अमीन हैं, और जो कहते हैं वही होता है, ऐसा सब कुछ मानते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की नहीं मानेंगे। अच्छा, इल्म हासिल करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम से नहीं, इनसे तो नहीं हमने सीखना, किससे इल्म हासिल करते थे, मदीना तैयबा जा करके यहूद से इल्म हासिल करते थे, वहां से जाके पूछते थे, हाँ भाई हमें बताओ कि अल्लाह का नबी कैसा होना चाहिए, हमें ये बताओ कि अल्लाह के नबी की क्या क्या जो है ना वो अलामत होनी चाहिए, क्या चीज हम सीखें। अच्छा, वो जो बता रहे हैं उसके ऊपर बाकायदा अमल भी करते थे आकर के, राइट, अमल भी करते थे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते थे उन लोगों की बताई हुई जो है वो तदबीरों को, तरकीबों को, राइट, और उनकी बात पर एतमाद भी करते थे, लेकिन जो लोकल अवेलेबल था नहीं, उसकी बात नहीं मानी। ठीक है ना, उसी तरीके से यही फरिश्ते जो है ना, ये भी दूर की चीज है ना, दूर के ढोल है ना, फरिश्ते क्या है, दूर के ढोल है, और नबी इंसान रजुल ये करीब की, घर की, घर की चीज है। ठीक है ना, हमेशा लुकिंग फॉर दी फार्दर, जो चीज दूर है उसको देखना, जो करीब है उसको नहीं देखना, ये आज के जमाने में जो आपने लिखा, हम यूट्यूब से, राइट, अपने उलमा हैं, अपने उस्ताद हैं, उनसे सीखने के बजाय यूट्यूब से जाकर के सीखेंगे, सोशल मीडिया से जाकर के सीखेंगे, है ना, इस तरह की चीज है। ठीक है ना, तो ये उसूल बन गया, ये उसूल है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब क्या दिया, सवाल पूछते थे पुराने वाक़यात और अंबिया के बारे में, जी अल्लाह ताला ने इसका जवाब क्या दिया, इसको ऐसे तला दिया ना बिल्कुल, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, अहलिल क़ुरा में से। ठीक है,
यानी उनका ये ख्याल बिल्कुल बेबुनियाद और लगव है कि अल्लाह का रसूल और पैगंबर फरिश्ता होना चाहिए, इंसान नहीं हो सकता। बल्कि मामला इसके बरक्स है कि इंसानों के लिए अल्लाह का रसूल हमेशा इंसान ही होता चला आता है। यानी इंसान होता चला आता है, क्या क्या मतलब? हम जिन्स जिस जिन्स के इंसान है उसी जिन्स का जो है वो रसूल होता है। ठीक है, इंसान अलबत्ता हम इंसानों से उसको ये इम्तियाज हासिल होता है कि उसकी तरफ बराह रास्त हब ताला की वही और पैगाम आता है, और वो किसी के सही व अमल का नतीजा नहीं होता। अल्लाह ताला खुद ही अपने बंदों में से जिसको मुनासिब समझते हैं इस काम के लिए इंतखाब फरमा लेते हैं, और ये इंतखाब ऐसी खास सिफात कमाल की बिना पर होता है जो आम इंसानों में नहीं होती। ठीक है ना, यानी अल्लाह ताला कोई काम करते हैं लेकिन उसकी कोई वजह होती है, फिर वो काम करते हैं। ये और बात है कि जो अल्लाह ताला जो है वो खालिक हैं, तो वो सिफात के भी खालिक हैं। किसी के अंदर जो अच्छी सिफात होती हैं वो भी अल्लाह ताला ही की दी हुई होती हैं। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला के साथ ये खास चीज है क्योंकि खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। अलबत्ता दूसरे इंसान वो जो सिलेक्शंस करते हैं वो किसी के अंदर किसी की अल्लाह की तरफ से दी हुई सिफात को देखते हुए उसको किसी काम के लिए मुंतखब कर लेते हैं। वो सिफात देते नहीं है, सिफात तो अल्लाह देता है, लेकिन सिफात देख करके किसी को जो है वो किसी काम की जिम्मेदारी दे देते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यही बात जो है वो फिर मुख्तलिफ जगहों पर कुरान मजीद में फरमाई कि जैसे सूरह कहफ के आखिर में ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दीजिए इनको कि मैं तो तुम्हारे जैसा एक बशर हूं, यूहा इलैया, वही आती है मेरी तरफ, इन अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ये वही आती है, तो बस ये फर्क है मेरे तुम्हारे, बस। तो खैर ये फर्क नहीं है, यानी ये जमीन आसमान का फर्क है, किसी के ऊपर वही का आना और किसी के ऊपर वही का ना आना, लेकिन इंसान ही थे। ये बस से मतलब खाली है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही थे। आगे उन लोगों को तंबीह है जो अल्लाह की तरफ दाई और रसूल की हिदायत के खिलाफ वर्जी करके अजाब इलाही को दावत देते हैं। फरमाया, अफलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या नहीं देखा इन लोगों ने चल करके, यानी क्या क्या नहीं ये लोग चले जमीन के अंदर, फयंजुरु कैफ कान आकिबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, कि कैसा हुआ मामला उन लोगों का जो उनसे पहले गुजरे हैं, वला दारुल आखिरति खैरुन लिल्लज़ीन तक़ौ अफला ताक़िलून। यानी क्या ये लोग जमीन में चलते फिरते नहीं कि इनकी पिछली कौमों के हालात का मुशाहिदा हो कि रसूलों के इनकार ने उनको किस अंजाम में बद में मुब्तला किया, मगर ये लोग दुनिया की जाहिरी जीनत व राहत में मस्त होकर आखिरत को भुला बैठे हैं, हालांकि परहेजगारों के लिए आखिरत इस दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या इन लोगों को इतनी भी अकल नहीं कि दुनिया की चंद रोजा राहत को आखिरत की दाइमी और मुकम्मल नेमतों और राहतों पर तरजीह देते हैं? अच्छा, किसी ने यहाँ पे लिखा कि ये भी अल्लाह का एहसान है कि हम जिन्स से ही नबी अता फरमाए, अगर फरिश्ते होते तो हम कैसे उनकी पैरवी कर सकते थे, तब हमें तब भी एतराज होता। एग्जैक्टली, ठीक है ना, उस वक्त जो एतराज करने वाले होते हैं उस वक्त ये एतराज करते हैं कि हम फरिश्ते की पैरवी कर कैसे सकते हैं, भाई ये तो फरिश्ता था और हम तो फरिश्ते नहीं हैं। ठीक है ना, तो ये बस उसूल होते हैं सारे के सारे। उसूल ये है कि भाई जिसने शुक्र करना है तो उसने शुक्र ही करना है, चाहे उसके पास जो है वो करोड़ों हो, चाहे उसके पास जो है वो हजारों हो, चाहे उसके पास जो है वो बहुत ही थोड़ा बहुत हो, उसने शुक्र ही करना है, और जिसने जो है वो यानी नाशुक्री करनी है तो उसको आप जो है वो दुनिया के खजाने भी दे दो, उसने नाशुक्री करनी है। तो यही मामला इन लोगों का भी होता है कि जो एतराज करने वाले होते हैं तो वो उनको आप इंसान दें तो उसके ऊपर एतराज, उनको आप फरिश्ते दें तो उनके ऊपर एतराज, उनको आप करीब वाले दें तो उनके ऊपर एतराज, उनको आप दूर वाले दें तो उनके ऊपर एतराज, उन्होंने बिलाखिर जो है ना वो एतराज ही करना होता है। ठीक है, तो असल में तो अपना घुरु घंटाल सारा का सारा मसला होता है। तो बहरहाल ये बात करके बस आज की क्लास हम खत्म करते हैं, क्लास का टाइम मुकम्मल हो गया है कि वला दारुल आखिरते खैर लिल्लज़ीन तक़ौ। ये जो तकवा वाले लोग होते हैं ना, तो इनके लिए जो है ना दारुल आखिरत खैर है। अब क्या मतलब, ठीक है ये तो बात पता है, यहाँ भी तकवा जो इख्तियार करेगा तो उनके लिए आखिरत आखिरत की जिंदगी है और वो बहुत अच्छी जिंदगी है। तो यहाँ पर तो काफिरों की बात हो रही थी कि ये जो काफिर लोग हैं ये देखते नहीं हैं कि क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो के अल्लाह की नहीं मानते थे, नाफरमानी करते थे। ठीक है, तो ये जो जो ईमान
और तकवा वाले लोग होते हैं ना, ईमान वाले ही, क्योंकि तकवा की शर्त है कि ईमान हो, ईमान के बगैर जो है वो तकवा नहीं हो सकता। तो इनका मामला जो है ना फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और ये इनकी अलामत में से एक अलामत है कि ये लोग जो है ना, जिनका के आखिरत में ठिकाना होता है ना, ठीक है, आखिरत में यानी जन्नत में ठिकाना होता है, इनका जो ये मिजाज है ना, मिजाज ही मुख्तलिफ हो जाता है दूसरे लोगों से। एक तो ये है ना कि अल्लाह का हुक्म मानते हैं और जो है वो इबादत करते हैं और नेकियां करते हैं, एक और भी इसका देखने का अंदाज है इसी बात को, दूसरे अंदाज में भी, कि दीज पीपल जो है ना, ये जो जो लोग हैं ना, ठीक है, जिनका जन्नत में ठिकाना अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, दुनिया के अंदर भी जो है ना इनका मिजाज जन्नत वाले मिजाज का, ठीक है ना। वो कैसे हो जाता है? वो इस तरह से कि देखें, इंसान की जिंदगी के अंदर जो है ना वो तीन अदवार आप कह सकते। एक तो वो होता है ना कि जी एक बचपन का दौर है, फिर उसके बाद जवानी का दौर है, फिर जो है वो बूढ़ा उधेड़पन का दौर है, फिर उसके बाद है। तो इनका जो इनकी जिंदगी के अंदर जो है ना वो तीन अदवार होते हैं। एक होता है आज, एक होता है आज का दिन, आज का वक्त, ठीक है ना, और एक होता है कल का वक्त, टुमारो, और एक होता है डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ लें कि आज का मतलब तो है कि अभी जो चीज मौजूद है वो आज की जिंदगी, ठीक है ना। कल का मतलब ये है कि जो के कहते हैं ना अंग्रेजी में, टुमारो टुमारो नेवर कम्स, तो यानी कल का मतलब ये है कि ये आज नहीं है बल्कि लेटर। और परसों से मुराद क्या है, डे आफ्टर टुमारो से क्या मुराद है, मरने के बाद वाली जिंदगी, ठीक है ना। अब चूंकि ये लोग जो है ना, इनका हर अमल, इनकी हर सोच, इनकी हर प्लानिंग, इनकी हर तदबीर किस चीज के लिए होती है, डे आफ्टर टुमारो के लिए, डे आफ्टर टुमारो के लिए, ठीक है ना, यानी मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए। तो अब जो है ना इनका मिजाज ऐसा बन जाता है कि ये जो लोग हैं ना, ये आज में जिंदा रहते हैं, आज में जिंदा रहते हैं, जो अभी है ना बस इसको एंजॉय करो। ये चीज आपको काफिरों में भी नजर आएगी, ठीक है ना, वो भी आज में जिंदा रहते हैं, लेकिन वो आज में जिंदा परसों का इनकार करके रहते हैं। ये आज में जिंदा जो है ना वो परसों का इस बात करके आज में जिंदा रहते हैं। इस वजह से ये लोग जो है ना, इनकी जिंदगी जो होती है वो जन्नत वाली जिंदगी गुजर, क्यों? इसलिए कि इनके पास जो चीज अभी अवेलेबल है ना, ये उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं और उसको जो है वो मुकम्मल तौर पे एंजॉय कर लो, तहे दिल से एंजॉय कर लो, ठीक है ना। इनका ये नहीं होता कि जी कल क्या होगा, फिर जो है ना वो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बात कैसे बनेगी, ये काम कैसे होगा। भाई जो अल्लाह ताला ने मुझे आज दिया है ना, मेरा तो वो मसला है कि मैं आज वाली चीज को कैसे डील करता हूं, राइट। अगर नेमत है मैं उसके ऊपर आज अल्लाह ताला का शुक्र, ये कोई थोड़ी कि मैं कल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा नेमत के ऊपर, नहीं, आज शुक्र करना है। अगर कोई चीज मेरे मिजाज के खिलाफ आ गई, मुझे आज उसके ऊपर सब्र करना है, ठीक है ना। जो अल्लाह ताला ने मुझे नेमत दी है, मुझे आज बस उस नेमत को जो है ना वो एंजॉय कर लेना है, कल अल्लाह ताला फिर दे देंगे, ठीक है ना। तो इनकी ओवरऑल जो है ना, बस इसका मतलब ये नहीं है कि ये यानी बिल्कुल भी जो है वो सेविंग कुछ नहीं करते हैं और घर नहीं बनाते हैं और ये नहीं करते, गाड़ी नहीं खरीदते हैं या कोई जो है वो जॉब नहीं करते हैं, ये करते हैं इस तरह की, लेकिन इनकी जो वो मेजर कंसर्न होती है ना, वो मेजर कंसर्न परसों की जिंदगी होती है और आज की जिंदगी, और कल को जो है ना ये सुन्नत की हद तक रखते हैं, बस सुन्नत की, क्योंकि कल जो है ना वो ऐसा मामला है कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं सुन्नत की हद तक काम करूं, बाकी अल्लाह ताला विल प्रोवाइड फॉर मी। मैंने सुन्नत की हद तक काम करूं, अल्लाह ताला विल प्रोवाइड फॉर मी। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि आज इस वक्त मैं क्या करूं, और वो क्यों? क्योंकि परसों की जिंदगी में जो है ना वो इसी की बुनियाद पर फैसला होगा, कल की जिंदगी तो भाई अल्लाह जाने, अल्लाह के हवाले, अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम कर दिया, ठीक है ना। देखें जन्नत के अंदर एग्जैक्टली यही होगा, जन्नत ये जन्नती मिजाज है, ठीक है ना, जन्नत में एग्जैक्टली ये होगा। जन्नत में जो जब पहुंच जाएंगे ना, तो वहां पर क्या होगा, एवरी डे विल बी टूडे। वहां पे जो लोग होंगे ना जन्नत के अंदर, वो कल के लिए जिंदा नहीं रह रहे होंगे कि कल जो है ना वो हमें ये वाली नेमत मिलेगी, कल हमें ये, भाई जो मिल रहा है वो उसमें इतना खुश होंगे उनको और किसी चीज की कोई चीज याद ही नहीं रहेगी सिवाय अल्लाह के दीदार के। वो भी उलमा से पूछेंगे तो उलमा बताएंगे हाँ भाई अल्लाह का दीदार नहीं मिला, वो मांगने की चीज है तो वो मांगेंगे तो पर अल्लाह का दीदार भी मिल जाएगा, लेकिन अदरवाइज दे विल बी हैप्पी इन द मोमेंट, दे विल बी हैप्पी इन द मोमेंट, देर इज नो टुमारो, द टुमारो विल नेवर कम, दे डोंट इवन केयर अबाउट, दे आर हैप्पी इन द मोमेंट। इसी को कहते हैं जैसे आपने लिखा अल्लाह से राजी, हैप्पी इन द मोमेंट, ठीक है ना। तो ये मिजाज अगर हमारा बन जाए ना तो उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा जन्नत जन्नतियों वाला मिजाज बन के, ठीक है ना, और अल्लाह ताला से फिर इसके ऊपर शुक्र अदा करना, यानी ये मिजाज भी तो अल्लाह ताला की नेमत है ना, इस नेमत के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला इस मिजाज में और तरक्की अदा फरमाए, ठीक है ना। तो किसी ने पूछा यहाँ पे कि तकवा का ऊंचा दर्जा क्या है, तो तकवा का ऊंचा दर्जा यही है कि जी अल्लाह ताला की रजा में राजी हो जाए, गुनाहों से जो है वो, यानी गुनाहों का खोट भी हमारे अंदर से निकल जाए, हमारे रग रग और रेशे रेशे जो है ना वो गुना नाफरमानी, चाहे फिक्री हो, चाहे वो अमली हो, चाहे वो सोच की हो, चाहे वो नजरिए की हो, हर किस्म की अल्लाह ताला की नाफरमानी हमारे अंदर से निकल जाए, ये तकवा का ऊंचा दर्शन, ठीक है। लंबी उम्मीदें नहीं बांधते जी, हजरत सुन्नत की हद समझा दें प्लीज, सुन्नत की हद समझा दें प्लीज, सुन्नत की हद, सुन्नत की हद तो भाई नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी है ना, यानी उससे आगे बढ़ करके तो हम कोई कोई सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सुन्नत की हद तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम की बाकी है कि तीन जो दर्जे हैं सुन्नत के, एक जो है वो जाहिरी सुन्नतें होती हैं, एक जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की के अखलाक जो हैं वो सुन्नत का दूसरा दर्जा है और ज्यादा आला दर्जा है, और तीसरा और सबसे आखिरी दर्जा सुन्नत का जो है वो है नबी अलैहिस्सलाम की कैफियात, नबी अलैहिस्सलाम की कैफियात, ठीक है ना, यानी मोहब्बत इलाही, खशियत इलाही, खैर ख्वाही हर एक के लिए, खैर ख्वाही हर एक के लिए, ठीक है ना। और इसी तरह की जो बाकी चीजें होती हैं, तौबा की कैफियत में रहना, इनाबत की, जुहद, रियाज, वो जो 10 मकामात अशरा हमारे मशाइख भी फरमाते हैं, ठीक है ना, वरा, तकवा, सबर, शुक्र, तवक्कुल, तफीज और रजा, मकामात अशरा, ठीक है ना, ये कैफियात नबी अलैहिस्सलाम। कल की परवाह सुन्नत की हद तक, कल की परवाह सुन्नत की हद तक, सुन्नत की हद तक का मतलब ये है कि कल की परवाह में सुन्नत की हद तक का मतलब ये है कि यानी वो सुस्ती, काहली और जो है वो क्या कहते हैं गफलत अपनी जिम्मेदारियों से ये ना करना, बल्कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में जो है नबी अलैहिस्सलाम की जो ताबईन है सहाबा कराम उनकी सुन्नत भी शामिल होती है, तो जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी ना वैसे जो है जिंदगी गुजारना, ये सुन्नत की हद है और इससे हट करके ना जिंदगी गुजार, मकरूहात शरईया मकरूहात तबईया बन जाए, क्या तकवा का ये ऊंचा लेवल है। हाँ ये भी कहते हैं मशायख के, यानी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज में बात को एक्सप्लेन की जाती है ना, तो एक टर्मिनोलॉजी ये भी है कि तबीयत जो है ना वो मकरूहात शरिया से जो है ना वो कराहियत अख्तियार कर ले, ठीक है, और जिन चीजों को शरीयत ने पसंद किया है उनकी तरफ जो है वो तबीयत खिंचनी शुरू हो जाए, ठीक है, ये भी तकवा का ऊंचा लेवल करा दिया जा सकता है। ये सब एक ही चीज है, ये जस्ट जस्ट लाइक डिफरेंस ऑफ वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज, वरना कॉन्सेप्ट मकसद जो है वो सबका एक ही, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने मुकर्रबीन और बख्शे बख्शाए और तौबा ताइबीन बंदे में बंदियों में शामिल फरमाए, और हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला अपनी रजा को दाखिल फरमा दे, हमारी मदद कर दे, हमारे अपने खिलाफ, हमारे अपने शुरूर और हर किस्म के जो फितन जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं अल्लाह ताला उन सब के खिलाफ हमारी मदद फरमा दे। सलाम वालेकुम।